हरे कृष्णा। अध्याय सात, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भगवद ज्ञान। श्री भगवान वाच, मैया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस श्लोक में केवल भक्ति, उत्तमा भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे प्रताप पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। संशय का क्या अर्थ है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं संबंध में। संशय का अर्थ है कि परम सत्य वास्तविक रूप से निराकार है या साकार है। ये संशय समाज में, विद्वानों के समूह में भी चलता रहता है। भगवान है कौन वस्तुतः? तो भगवान यह बता रहे हैं कि हम भगवान में आसक्ति बढ़ा करके, मन को भगवान में आसक्त करके, योग का आश्रय करके, भक्ति योग का आश्रय करके उनको हम समग्र रूप से जान पाएंगे, संशय रहित, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और इसके लिए हमको भगवान से ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को जानने का तरीका भगवान जानते हैं या फिर उनके शुद्ध भक्त जानते हैं। तो भगवान का आश्रय लेने का मतलब है उनके शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के भगवान की भक्ति में संलग्न रहना, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूपेण जान पाएगा। पूर्ण रूपेण से अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान को पूरी तरह से समझ लेंगे, लेकिन कोई संशय नहीं रह जाएगा भगवान के संबंध में। तात्पर्य, और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझाएंगे कि विधि है क्या भगवान को समझने के लिए और दिव्य प्रेम में सेवा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तात्पर्य, भगवद गीता के इस सातवें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। यहां से भक्ति के बारे में शुरू हुआ है बताना। भगवान बता रहे हैं कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि चार प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और चार प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। एक पॉइंट जहां पे अब देखना है कि भगवान के ऐश्वर्य को जब हम सुनते हैं तभी हमें भगवान के प्रति आसक्ति होती है। भगवान महान है ये जान लेना संपूर्ण नहीं है। भगवान कैसे महान है जब हम सुनते हैं तब भगवान की सेवा का हमारे प्रेरणा हमको मिलती है, भगवान की शरण लेने की हमको इच्छा होती है। तो इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। प्रथम छह अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। आत्मज्ञान के बारे में बात किया गया है। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्मज्योति या अंतरयामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आंशिक होती है। थोड़ा समझिए इस बात को। पूर्ण सत्य मतलब सत, चित और आनंद। तो ब्रह्म की साक्षात्कार का मतलब है शाश्वतता, यानी सत को समझना। परमात्मा का अर्थ है, परमात्मा साक्षात्कार का अर्थ है सत यानी शाश्वतता, और चिद यानी ज्ञानमयता का साक्षात्कार करना, और भगवान का साक्षात्कार का अर्थ है सद, चिद और आनंद। इन तीनों का जो तीनों पहलू हैं इनका साक्षात्कार करना, और ये केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही होता है। जैसे यहाँ बता रहे हैं, भगवान कृष्ण में अपने मन को आवेशित करने के द्वारा व्यक्ति जान पाएगा। और इस बात को हंस अवतार के रूप में जब भगवान अवतरित हुए थे, भागवतम में आता है, तो वहां भी यही बात बताई गई थी कि मन को विषयों से हटा करके भगवान में लगाना, यही योग कहलाता है, और इसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। इस संबंध एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। स्पाइरल आप समझते होंगे, स्प्रिंग मान लीजिए। तो स्प्रिंग के जितने भी गोले होते हैं उन सबकी एक कॉन्सेंट मतलब एक कॉमन सेंटर होता है। सारे जो सेंटर होते हैं, वो जो केंद्र होते हैं, उनको आप एक लाइन में रख सकते हो। तो आप अगर केंद्र की तरफ देखते रहें तो आप देखेंगे कि ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही कृष्ण को अगर हम केंद्र में रखते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे बढ़ती और शुद्ध होती चली जाती है। और इसके विपरीत अगर हम केंद्र में माया को रखते हैं तो स्प्रिंग में, स्पाइरल में हम नीचे होते चले जाएंगे। तो ये चुनाव हमें करना है कि माया को अपने केंद्र में, जीवन के केंद्र में, चेतना के केंद्र में रखना है कि कृष्ण को रखना है। तो कृष्ण को केंद्र में रखते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी, और क्रमशः जितनी चेतना शुद्ध हो जाएगी उतना ही भगवान का अनुभव भी बढ़ता चला जाएगा। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। ये मैंने समझा दिया। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। यानी कि जब व्यक्ति कृष्ण प्रेम से पूरित हो जाता है उसका हृदय, तो इस बात को समझ पाता है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली से वृंदावन जाना है तो रास्ते में जितने भी स्टेशन आते हैं तो वृंदावन तक पहुंचने के पहले के वो सोपान है। तो अन्य योगों का व्यक्ति आश्रय लेता है क्योंकि भक्ति योग को करने की जो श्रद्धा है उसके हृदय में भी है नहीं, क्योंकि उसका हृदय अभी शुद्ध नहीं है। इसी कारण से तो अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको अन्य योगों का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सूर्य देवता के से दोस्ती कर ले, सूर्य लोक में प्रवेश कर जाए, तो सूर्य की जो डिस्क है, सूर्य का गोला और सूर्य की किरणों के बारे में स्वतः जान लेगा, उसको उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान को समझ लेता है, भगवान कृष्ण से अपने संबंध को समझ लेता है, तो परमात्मा का अनुभव और ब्रह्म का अनुभव उसको अपने आप हो जाता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बना जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अग्रणी मतलब फर्स्ट। जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता नहीं है तब तक वो भगवान की कोई भी भक्ति नहीं कर सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो बहुत सुन लिया है, हमको और सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुनने के द्वारा भगवान की प्रेरणा की भक्ति करने की हमको प्रेरणा मिलती है, और भक्ति हमें संपादित किस प्रकार से करनी है ये भी सीखते हैं सुनने के माध्यम से। तो सुनना बहुत आवश्यक है भक्ति के केस में, और ये सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार से कार्य करती है उसको प्रभुपाद आगे समझाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नवदा भक्ति में व्यक्ति अलग अलग इंद्रियों का उपयोग करता है। इस श्रवण में कान का उपयोग करता है, कीर्तन में कान का और जीभ का दोनों का उपयोग करता है, स्मरण में मन का उपयोग करता है, पूजन में हाथ पैर सब कुछ सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार से हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखता है, और जब इंद्रियां लगी रहती हैं तो मन तो अपने आप ही लगा रहता है। तो नवदा भक्ति के माध्यम से अपने मन को केंद्रित करता है भगवान के ऊपर, ये उसका लक्षण है। और जैसे मन भगवान की सेवा में लग जाता है तो हृदय का शुद्धिकरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना शुद्धिकरण जीवात्मा का अपने मन को भगवान में लगाने से होता है उतना और किसी तपस्या से नहीं होता है। तो इसीलिए नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे अपने आप ही बहुत जल्दी मन, बल्कि कह सकते हैं तुरंत ही मन भगवान में लगता है और जीवात्मा तुरंत ही शुद्ध होना चालू हो जाता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्सुणो, अर्थात मुझसे सुनो। ये भी इंटरेस्टिंग है, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त सीखना चाहिए, ना कि अपने शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। ये पॉइंट समझना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान को भगवान से अधिक कोई नहीं जानता, तो या तो भगवान अपने बारे में बताए या फिर भगवान का शुद्ध भक्त उनके बारे में हमको बताए, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाता है। तो इसलिए जब हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनते हैं तो वास्तविक रूप से वो भगवान से साक्षात सुनने के समान ही होता है। जैसे इस समय हम प्रभुपाद का जो तात्पर्य सुन रहे हैं वो हम उनकी कृपा से भगवान की ही वाणी को साक्षात सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी को वो परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है, प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन से समझा दिए कि कृष्ण भगवान है, कम से कम सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करेगा तभी भगवद्गीता समझ पाएगा। तो इस बात को भगवद्गीता में आगे भी बोलते हैं अर्जुन की, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम मम भवाम, और आप पर ब्रह्म हैं, आप परम पवित्र हैं, परम धाम हैं, ऐसा मैंने असित देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रविष्य में, ऐसा मैंने असित मुनि से सुना था, नारद मुनि से सुना था, देवल ऋषि से सुना था, अब आपके मुख से भी सुन रहा हूं। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट कि भक्त, अगर हम शुद्ध भक्त के मुख से सुनते हैं, जिनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, जो अपने मनगढ़ंत तरीके से हमें कुछ नहीं बताते, अपितु तो केवल भगवान की वाणी को ही हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य होता है। इसे कहते हैं अभिधा वृत्ति, इसको मैंने पहले समझा चुका हूं। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले लाइन से आ रही है कि हमें जब भगवान कृष्ण से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो हमें एक छिछले व्यक्ति से करने सुनने का दुर्भाग्य जनित निर्माण नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं है, चाहे संस्कृत का वो कितना बड़ा भी पंडित हो, वो भगवद्गीता के मर्म को नहीं समझ पाएगा। और हम देखते भी हैं इस कारण से उसके जीवन में बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो नहीं जा निकलती नहीं है उसके जीवन से। और हम देखते हैं कि जो सामान्य भक्त भी है, वो भक्ति का आश्रय लेता है, तो उसके जीवन में से सारा जो पापाचार है वो चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भगवद्गीता व्यक्ति सही रूप से सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो उसके जीवन में वैराग्य तो आता ही है। श्लोकों पर विचार करेंगे। शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि भद्राणी विधु नोति सुहृत्सताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभदयश्च ये चेत एतेरना विद्धं स्तं सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशयः शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसका अनुवाद है, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। बहुत सुंदर है कि व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर भागवत कथा सुन रहा है, भगवद गीता सुन रहा है, तो अपने आप ही पुण्य का निर्माण हो जाता है और पाप कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। कितना आसान है, समझ में ना भी आए तो भी पुण्य इकट्ठा हो जाता है, और ये पुण्य अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। बहुत सुंदर बात है कि अगर प्रामाणिक स्रोतों से हम सुनते हैं और प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। चार प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसमें प्रमुख है, पहला है श्रोतव्य, उनके बारे में सुनने से। तो जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो वो एक मित्र की तरह कार्य करते हैं, अन्यथा वो परमात्मा की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे कर्म है, तुम उसको भोगो। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना शुरू कर देता है, तुरंत भगवान चालू हो जाते हैं। और किस प्रकार से क्या करते हैं, जरा देखिए। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। वो सुप्त ज्ञान क्या है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मेरा कृष्ण से एक संबंध है, उसको हम भूले बैठे हैं। तो ऐसा जब व्यक्ति भागवत सुनता है, भगवद गीता को सुनता है भक्तों के मुख से, तो फिर उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जगने लगता है। ज्यो ज्यो वे भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। और प्राय लोग इस बात को बोला करते हैं कि प्रभु जी भक्ति में निष्ठा कैसे आए, दृढ़ श्रद्धा कैसे आए, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। स्थिर होने का तरीका बहुत सिंपल है, अधिक से अधिक भक्तों के बारे से सुने भगवान के बारे में, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग फोन से भी सुन सकते हैं। जिन वैष्णव में हमारी श्रद्धा है, उसको उनके मुख से सुनने से, अगर वो प्रामाणिक वैष्णव है, हमारी भक्ति में तुरंत प्रगति होती है, कोई मुश्किल नहीं। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, भक्त देखते हैं, लोग सोचते हैं अरे भक्त लोग तो बड़ा सादा जीवन जीते हैं, क्योंकि भक्त लोग अपने आप ही जब रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाते हैं तो वो शरीर की आवश्यकताओं को बहुत अधिक वो पूर्ण करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसी कारण से काम और लोभ खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगत में हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी परेशानी कर उठाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान के तत्व को समझ पाने के लिए हृदय का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए नियमित रूप से जब हम हरि नाम करते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो अपने आप सतोगुण का वृद्धि होती है चित्त में, और फिर जो बातें आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी वो बड़ी आसानी से समझ में आने लगती हैं भक्ति के माध्यम से। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि संशय मिथ्यांकार के कारण होता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि भगवान साकार है कि निराकार है। लेकिन जैसे जैसे ये हृदय ग्रंथि मिथ्यांकार की कम होती जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो फिर व्यक्ति देख पाता है कि वास्तविक सत्यता क्या है। जैसे आजकल समाज में बहुत चल रहा है कि अरे भाई सभी लोग अपने आप को सही बोलते हैं, सही बात है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग भागवतम को सुन करके सत्वगुण की वृद्धि करेंगे तो फिर हमको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कौन लोग चीटिंग कर रहे हैं और कौन लोग वास्तविकता को प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। अद्भुत बात है, एक व्यक्ति हैं, उनको मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनसे मैं मिला, उनने 35 भागवत कथा करवाई थी। तो 35 भागवत कथा करने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आया कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, कृष्ण भगवान है और कृष्ण से उनका कुछ संबंध है। तो मैंने उनका बोला ये तो हमारा इस्कॉन का 5-6 महीने वाला भक्त ही जान समझ जाता है, इसका उत्तर दे पाता है। तो ये दिखाता है कि अगर हम भक्तों के मुख से नहीं सुने और उन्हें मुझे बात तो हमारे हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता। और उन्हें स्वीकार भी किया कि हाँ मैं भागवत कथा का आयोजन इसीलिए करता था ताकि हमारी गौशाला के लिए हम कुछ धन इकट्ठा कर सकें। तो इंटेंशन का बहुत फर्क पड़ता है। आपने यहाँ पे देखा कि जो है सुहृत सताम, जो सताम व्यक्ति हैं, जो ईमानदार हैं, जो अपने वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं और भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो भगवान स्वयं मदद करते हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि अन्य योग पद्धतियों में वो जो योगी है वो अपनी शक्ति से अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन भक्ति में भगवान स्वयं भक्त के हृदय को साफ करते हैं, बशर्ते वो भक्त लगा रहे भगवान की कथाओं को शुद्ध भक्तों से सुनने में। तो ये तरीका है एक केवल भक्ति का। इसके बारे में चर्चा हुई, आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण।